फिर उसके बाद मरजल बहरैनी यल्तकियान, उसने छोड़ दिया दोनों समुद्रों को कि बाहिम मिल जाएं, यानी समंदर दो जारी कर दिए, उसने छोड़ दिया यानी जारी कर दिया, जारी कर दिया उसने कि एक दूसरे से मिल जाते हैं, दोनों में एक आड़ है जिससे वो आगे नहीं जा सकते। बैनहुमा बरज़खुन ला यबगियान, वो दो समंदर है यानी एक खारे पानी का एक मीठे पानी का, एक पानी है जो के यानी ऐसा है जो गर्म है और एक का टेम्परेचर डिफरेंट है। क्या इसके अंदर बात है कि पानी तो सारा पूरी जमीन का मिला हुआ है, लेकिन जितने ओशंस हैं आपस में मिले हुए हैं ना, वो कहीं ऐसा नहीं है कि नहीं मिले हो, सब पानी मिले हुए, इसके बावजूद एक जगह एक जैसा पानी और दूसरी जगह दूसरा पानी, ये कैसे हो गया? पांच दफा ऊपर के करंट्स डिफरेंट है और नीचे के करंट डिफरेंट है, ऊपर किसी तरह का पानी नीचे किसी और तरह का पानी, बाज दफा साथ साथ है, मिलते क्यों नहीं? हम तो ग्लास में डालें तो दोनों मिक्स हो जाते, वो क्यों नहीं मिलते? ये भी अल्लाह ताला ने उनके दरमियान एक आड़ रख दी है जिससे आगे ये तजावुज नहीं करते। अभी अय्या अलाई रबी कुमा तो कसीबान, इसमें अल्लाह की कुदरत की निशानी है। फिर तुम अल्लाह की किन नेमतों का इनकार कर सकते हो कि अल्लाह की तरफ से नहीं है ये, और दोनों से तुम फायदा उठाते हो, दोनों से देखें क्या क्या निकलता है वो भी आगे आ रहा है, दोनों से मछलियां भी खाते हो, वो यखरुजु मिनहुमा लुलू वल मरजान, ये तुम्हारे लिए ज्वेलरी शॉप्स भी हैं, ज्वेलरी बनाती हैं, मोती और मूंगे इनसे निकलते हैं, इन दोनों से जीनत का सामान निकलता है, और वहां पे बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कैसे सीप अपना मुंह खोलती है उसमें पानी का कतरा जाता है और फिर वो उससे मोती बनता है और उसको कुछ साल लगते हैं बनने में, तो सुभान अल्लाह, कहां अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए वहां पे इंतजाम फरमा दिया तुम्हारी ब्यूटी के लिए कि तुम अपने आप को ब्यूटिफाई कर सकते हो उन मोतियों के जरिए, और ये दोनों समुद्रों से निकलते हैं, दोनों समुद्रों से तुम फायदा उठाते हो, ये तुम्हारे लिए इंतजाम भी अल्लाह पाक ने कर दिया। फबी अय्य आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़बान, फिर किस किस अल्लाह की नेमत का तुम इनकार करोगे? क्या क्या कुछ तुम इस्तेमाल नहीं करते फिर देने वाले को ही भूल जाते हो? किधर किधर से नजर चुराओगे? जिधर भी देखो, मशरिक में देख लो, मगरिब में देख लो, समुद्रों में देख लो, या जमीनों पे देख लो, सितारों की तरफ देख लो, सूरज की तरफ देख लो, दरख्तों की तरफ देख लो, हर तरफ तुम्हें अल्लाह ही नजर आएगा। उसकी निशानियां ये उसकी रहमतें हैं, तुम किधर किधर से नजर चुराओगे? हर तरफ अल्लाह की निशानियां बिखरी पड़ी हैं, तुम्हें अपने घेरे में लिया हुआ इन्होंने, तुम समझते नहीं, फिर भी तुम्हें फिर भी अल्लाह याद नहीं आता। वलहुल जवारिल मुनशआती फिल बहरी कल आलाम, और उसी के लिए जहाज ऊंचे ऊंचे उठे हुए जैसे के पहाड़ों पहाड़ों की तरह के जहाज हैं, इतनी इतनी वाकई बड़ी। अब तो सुभान अल्लाह, जो क्रूजेज आप देखते हैं उनमें ऐसे लगता है कि ये क्रूज है कि ये तो पूरा शहर जा रहा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग, 15-16 मंजिला बिल्डिंग, ऐसे लगता है पहाड़ चले हुए हैं समंदर के अंदर और पूरे पूरे शहर अंदर बसे हुए, अंदर क्या बाजार भी है, अंदर क्लब भी है, अंदर रेस्टोरेंट भी है, अंदर पूल्स भी हैं, अंदर कमरे सोने के लिए भी हैं, अंदर पता नहीं क्या क्या और इन्होंने चीजें बनाई हुई। सुभान अल्लाह, यानी सिर्फ तिजारत के लिए नहीं बल्कि अब तो सैरो तफरी के लिए भी ऐसे जहाज हैं, कितने वजनी हैं और कितना लोड लेके चल रहे हैं और पानी के ऊपर चल रहे हैं, जमीन पे नहीं खड़े हुए, और अल्लाह चला रहा है उनको। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इवन आज भी ट्रेडिंग या गुड्स का इधर से उधर जो ट्रांसफर करना है, हमारे पास जितनी चीजें यहाँ पे चाइना की पड़ी हुई है, ये चाइना से कैसे आई? जहाजों में आई थी, शिप्स में ही तो आ रही हैं। आज भी तिजारत सारी शिप्स के जरिए ही हो रही है, जहाजों से तो बहुत कम होती हैं, मुमकिन भी नहीं है उस तरह से जो चीजें शिप्स ला सकते हैं। तो ये तुम्हारे लिए कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, कभी चीजें इस्तेमाल करने लगे दूसरी जगह की मेड इन देखा करें कहां की, अल्लाह तूने कहां से कहां शिप्स के जरिए पहुंचाने। हम कहते नहीं ये तो इंसानों की बातें, इसमें तो मुतासिर होना ही नहीं चाहिए। और भाई जो इंसान भी कर रहे हैं उनके पीछे अकल और समझ और बनाना और उनको उन सारों को चलाना के ऐसे जहाज चलें और ऐसे समंदर इनको चलने दें, ये इसके पीछे भी कौन है? इसके पीछे भी तो अल्लाह है। हमें इंसान पता नहीं क्यों नजर आते। जहाज भी बनाया तो अल्लाह ने, इंसान को तालीम दी तो उसने बनाया, खुद नहीं बना लिया। और अल्लाह ताला की दीवे मटेरियल से ही बनाया, कहां से लेकर आया मटेरियल? यही से जमीन से तख्ते जोड़े हैं ना। और जिस ताकत के जरिए बनाया वो भी अल्लाह की दीवी है। तो इन द एंड बात तो वही है ना। हम कहेंगे हमारा है, हमने बनाया, वे तो इंसान ने बनाया, तो ऐसे ही है जैसे कोई औरत का ये बच्चा है, मैंने मैंने पैदा किया ना। अल्लाह ने पैदा फरमाया, अल्लाह ताला ने दिया, अल्लाह ने तखलीक किया। नहीं वो मेरे पेट से पैदा हुआ तो मैंने पैदा किया, नहीं सबको ही पता है ना अल्लाह ने पैदा किया। इसी तरह बाकी भी जो जितनी चीजें आप देखते हैं जिनको आप सोचते हैं ये इंसानों ने बनाई है और इनसे तो कोई जरूरत नहीं इंप्रेस होने, नहीं इंप्रेस हो अल्लाह की जात से कि अल्लाह है बनाने वाला, अल्लाह ने दिया सब कुछ दिया तो कि इंसान ने किया, इंसान की क्या अकल समझ। तो इस उसने इंसान तेरे नफे के लिए इतने इतने बड़े जहाजों को समंदर में रवां कर दिया। फबी अय्यी आलाए रब्बिकुमा तुकद्दिबान, तुम अपने रब की इस अजीम नेमत का इनकार कर सकते हो कि उसने दी नहीं है ये, और खुद ही जहाज भी चल पड़े हैं, खुद ही हमारे तक ये चीजें भी पहुंच सकती हैं। ये जितनी चीजें हम दूसरे मुल्कों की इस्तेमाल कर रहे हैं ये खुद ही हमारे तक आ गई। कितनी दफा देखते भी हैं, वैसे मेक भी देखते हैं, लेकिन इस तरफ को नहीं ध्यान जाता। देखो कैसे हमें शैतान ना अल्लाह को ही भुला देता है। हर तरह की बातें करेंगे, हाँ यहाँ की चीज अच्छी, वहां की नहीं अच्छी, यहाँ की जल्दी खराब हो जाती है, वहां ये सब चीजों का पता होता है। लेकिन कोई है ऐसा दुश्मन जो साथ लगा हुआ है, जो ध्यान अल्लाह की तरफ जाने ही नहीं देता। इंसान ये सोचे कि वो मेरे रब ने यहां तक मुझे ये चीज पहुंचा दी, अवेलेबल कर दी, लेकिन फिर साथ क्या फरमा दिया जब सारी बातें बता दी। कुल्लू मन अलैहा फान, जितना फायदा उठाना इनसे उठा लो, लेकिन ये याद रखना जो कुछ यहां है ये नहीं फरमाया सबको मौत आ जानी है, ये फरमाया सब ने फना हो जाना है। सब ने फना हो जाना है, फना मतलब मिट जाना है, सब ने मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाना है, गौन। ये चीजें जिनमें आज तुम खो गए हो और तुम्हें रब ही याद नहीं है और तुम इनको रब की नेमते ही नहीं मानते, यहां अगर मानते हो तो उनकी शुक्र गुजारी की तौफीक ही नहीं तुम्हें मिलती। तुम इंजॉय कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन याद रखना एक दिन सब फना हो जाएंगी, ये दुनिया खत्म होके रह जाएगी। अब ये जो सूरत है ना ये जा रही है आखरत की तरफ। अब आखरत की तरफ जाने के लिए जो दुनिया से आखरत का जो सफर है उसमें बीच में क्या है? फना, मौत। मौत की बात आ गई। इंसान की फना जो है बस उसके जिस्म की फना है, रूह की फना नहीं है, बाकी सब चीजों ने तो खत्म हो जाना। तो इंसान को एहसास दिला दिया गया कि इनमें ना खो जाना, एक दिन देने वाले की तरफ जाना है और वो देने वाला वयबका वजहु रब्बिका ذل جلال والاکرام। और तो सब कुछ फना हो जाएगा मगर एक जात है जिसको फना नहीं है और वो तेरे रब्बे जुल जलाल का चेहरा है, यानी उसकी जात। चेहरे से मतलब है उसकी जात जो जुल जलाल वल इकराम है, जलाल वाला और इकराम वाला है बहुत, एक तो ऑनर वाला और दूसरा बहुत सखावत वाला, इकराम वाला, देने वाला, जिसकी तकरीम भी हो, इज्जत भी हो और सखावत भी हो। तो ये पता चलता है कि ये जो दुनिया है ये तो फना हो जाएगी, जितनी नेमतें मुझे तुम्हें मिली हुई हैं वो भी फना हो जाएंगी। लिहाजा इन में खो के उस देने वाले को ना भूलना, उसकी शुक्रगुजारी में झुके रहना, क्योंकि इन्होंने तो तुम्हारे हाथ से चले जाना। अगर वो रब की जात जिसके पास तुम्हें लौटना है, उसको फना नहीं है। और यहीं से फिर अल्लाह ताला का ये नाम जो है अस्माए हुस्ना में आपने अलबाकी पढ़ा होगा, अल्लाह का नाम अलबाकी, तो वो यहीं से है। वह यबका वजहू रब्बिका, यहां से उलमा ने उसको उस नाम को लिया है कि ये तो फेल की सूरत में आया ना, लेकिन अल्लाह ताला का नाम अलबाकी ने यहां से लिया। अच्छा, आगे आता है जो वज है ना, तो अल्लाह ताला ने अपनी आंखों का, उंगलियों का, पिंडली का, चेहरे का जिक्र कुरान में फरमाया है। वज कई दफा आपने पढ़ा है, बाज लोग कहते नहीं वज चेहरा नहीं कहना चाहिए, बल्कि ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह से मखलूक के ऊपर चेहरा कह दिया तो मखलूक की जैसी मिसाल हो जाएगी। नहीं, बात यह है कि देखें अल्लाह ताला का जब हम वज कहते हैं तो हम कहते हैं जैसे उसकी शान के लायक है, जैसे उसकी शान के लायक है, तो कोई मखलूक में इसका नहीं मुकाबला कर सकता। लेकिन अल्लाह ने जब फरमाया ना कि उसका वज, तो हम इसका भी इनकार नहीं करेंगे, इसका हम इनकार नहीं करेंगे। अल्लाह का वज है, लेकिन जैसे उसकी शान के लायक, हमें नहीं पता, हम ना उसकी कोई तमसील कर सकते हैं, कोई मिसाल दे सकते हैं, ना उसकी कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। बस हम कहते हैं अल्लाह का मुबारक चेहरा, ये उसकी सिफत है, अल्लाह के मुबारक हाथ, ये उसकी सिफत है, अल्लाह की पिंडली, ये उसकी सिफत है। हम नहीं जानते, जैसे उसकी शान के लायक है बस, मगर हम इनकार नहीं करेंगे कि नहीं है ही नहीं, उसकी कुछ ना कुछ त्रोड़ मड़ोड़ के कुछ और तावील देने की कोशिश करें, वो नहीं हम करेंगे। ठीक है, अल्लाह का हिजाब है और उसका हिजाब नूर है, हिजाब और नूर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अबू ज़र ने पूछा था या रसूलल्लाह क्या आपने अल्लाह को देखा है, आपने फरमाया नूर देखा था मैंने, मैं कैसे उसको देख सकता हूँ। तो नूर वो क्या था वहां पे, अल्लाह का हिजाब था। अगर वो अपना हिजाब उठा ले तो उसके चेहरे की जो तजल्ली है, जो रेज ऑफ लाइट है, हर चीज को जला देगी जहां तक उसकी निगाह पहुंचेगी, और सारी मखलूक ही जल जाएगी, क्योंकि उसकी निगाह तो कोई हद ही नहीं है। तो हिजाब है अल्लाह के आगे, सुभान अल्लाह, और जो भी खूबसूरत चीज होती है वो हिजाब में ही होती है, और अल्लाह ताला तो जमील है। तो इसी तरह अल्लाह ताला के इस वज की बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ में भी आती है, और वो दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज़्ज़त नज़री इला वजहिकल करीम, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, अल्लाहु अकबर, उस नज़र की लज्जत की जो तेरे चेहरे, तेरे करीम चेहरे पे पड़े, कि अल्लाह ताला वो मुझे अपना दीदार अता फरमाना। तो उसमें भी वज कहा गया, और इंसान को अल्लाह की नाफरमानी करते हुए सोचना चाहिए कि अल्लाह वो है जो जुल जलाल वल इकराम है, जलाल वाला है, उसकी नाफरमानी कैसे की जा सकती, वो इकराम वाला है। हदीस में आता है लोगों, या जुल जलाल वल इकराम को लाजिम पकड़ लो, यानी इसका विर्द किया करो। ये भी इसमें आजम हो सकता है, आपने देखा हरम में जो दुआएं होती हैं उनमें अक्सर या अज़ुल जलाली वल इकराम कहा जाता है, तो इसमें आजम में से हो सकता है ये। ठीक है, वो फरमाया फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी तमाम मखलूक को चाहे वो इंसान है या जिन्नात है, ये नेमत है कि वो कुल्ली तौर पे फना नहीं होंगे, हर चीज बाकी फना हो जाएगी, मगर ये एक दूसरे जहान के अंदर मुंतकिल हो जाएंगे, इनकी ये फना है कि यहां से फना हो जाएंगे, वहां पे चले जाएंगे। तो ये तो ये भी अल्लाह की नेमत है, अल्लाह फबी यही आला रब्बी कुमा तो कजीबान। और ये कि अल्लाह बाकी रहने वाला है, तो फिर तुम अल्लाह ही के ऊपर तवक्कल करो, उसी से मांगो जिसको कोई फना नहीं है, वो के बाकी जिसके पास भी जाओगे वो तो सब फना होने वाले। यसअलुहु मन फिस्समावाती वल अर्थ, सवाल करते हैं उसी से, उसी के दर के सवाली हैं जो भी आसमान में और जमीन में। हमने बना दिया कि नबी के दर के सवाली हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि उसी से मांगते हैं जो आसमानों में और जमीन में। जब सब उसी से मांगते हैं तो तुम भी तो उसी से मांगो, यानी हर चीज जो आसमान में और जमीन में वो उससे मांगती। अब कोई क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन काफिर तो उससे नहीं मांगते, मुशरिक तो उससे नहीं मांगते। तो इसके दो जवाब है। एक तो ये कि जब भी बात की जाती है ना, मेजॉरिटी की बात की जाती है, जेनेरिक बात होती है कि यानी सब मांग, ये तो चंद एक है, उनकी तो एक एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दिया जाता है। नंबर टू बात ये कि काफिर भी अपनी जुबान काल से तो नहीं मांगता, लेकिन जुबान हाल से तो मांग रहा है। उसका जिस्म भी अल्लाह से ही मांगता है, वो मोहताज भी अल्लाह का ही है, उसको रिज्क भी अल्लाह देता है। उस यानी एक होती ना जुबान हाल और एक जुबान काल, काल का मतलब जुबान से बोल के मांगना, और एक है उसका हालत मांग रही है, उसकी हालत ऐसी है कि वो मोहताज है, वो मांग रहा है। अल्लाह के दिए बगैर ना वो जिंदा रह सकता है, ना चल सकता है, ना फिर सकता है, ना बोल सकता है। तो और तीसरी बात ये कि मुसीबत के वक्त तो काफिर की भी जुबान में आ जाता है, ओ गॉड हेल्प मी। काफिर भी क्या उठता है मुसीबत में, जब सख्त तरीन मुसीबत आती तो सब उसी से मांगते हैं, सब उसी से रिस्क मांगते हैं, रहमतें मांगते हैं, मगफिरत मांगते हैं। सब चीजों के सवाल हर एक उसी से करता है। आसमान वाले भी उसी से मांगते हैं, फरिश्ते अपने लिए ना सही लेकिन ईमान वालों के लिए मगफिरत मांगते हैं, उनके लिए सवाल करते हैं अल्लाह से। हमने पढ़ी हुई है पहले फरिश्तों की दुआएं। कुल यौमिन हुआ फी शअन, हर दिन वो शअन में है। शअन का मतलब क्या, यानी हर दिन वो कुछ इंपॉर्टेंट कर रहा है, हर दिन वो किसी इंपॉर्टेंट चीज में मशगूल है, किसी नई चीज के अंदर मशगूल है, किसी अहम चीज को देख रहा है। और ये भी है कि वो, ये उसकी शान है कि वो जिंदा करता है, मारता है, इज्जत देता है, जिल्लत देता है, रिस्क देता है, रोक लेता है, ये भी शान है। इब्ने अब्बास से भी एक है कि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करता है, गम को दूर करता है, किसी कौम को सरबुलंद करता है और किसी को नीचा कर देता है। ये एक हदीस में भी आया है, इब्ने माजा की हदीस है। तो वो हर रोज नई शान में है। और ये भी इसके माना किया गया कि उसकी शान है दुनिया में भी और आखरत में भी। दुनिया में अल्लाह ताला की शान ये है कि वो लोगों को हुक्म दे और किसी काम से मना करके आजमाए और अता करे और रोके, और क़यामत के दिन उसकी शान है कि वो जजा दे, हिसाब ले, सवाब दे। ठीक है, ये भी उसकी शान है। यानी अहम काम में वो ये नहीं है कि इंसानों को पैदा करके उसने छोड़ दिया, वो हर दम एक नई शान में। और यौमिन का जो लफ्ज़ है ना, ये दिन, ये मतलब नहीं कि जो हमारे दिन है उसको हम सोचने लगे, नहीं, बल्कि यौम जो है वो टाइमिंग के लिए आ रहा है कि हर साथ में, हर घड़ी में, क्योंकि जो हमारा दिन है ये तो 24 आवर का सिर्फ इस जमीन के लिए है। अल्लाह के हाँ दिनों की क्या सूरत हाल है हम नहीं जानते, कि हमारे हजार सालों पे उसका एक दिन है, या हमारे 50,000 सालों के बराबर वहां का एक दिन है, या क्या कैफियत है वो हम नहीं जानते। तो बस वो हर दिन यानी हर आन, हर वक्त में वो किसी ना किसी मसरूफियत में है, कोई चीजों की टेक केयर कर रहा है। कोई पत्ता तक भी गिरता है तो उसको उसका इल्म है, कोई दाना भी फूटता है तो वो जानता है और उसका इज़्ज़त है। वो इंतजाम संभाले हुए कायनात का। फबियाई रब्बी कुमा तो कदीबान, फिर अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को तुम दोनों झुठलाओगे। यानी कौन कौन सी, ये इस, ये भी एक अल्लाह ताला का करम है ना कि हर दिन वो एक नई उसमें है, आन में, नई शान में, हर दिन नए काम को जाहिर फरमाता है, हर दिन नया काम कर रहा होता है। तो आज नहीं कोई काम हुआ तो हो सकता है कल है, कल नहीं तो परसों है, हम अपने दिनों के लिहाज से अगर बात करें तो। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं सनफरुगु लकुम अय्युहत तकलान, और फिर देखिए आप शिफ्ट जा रही है उस तरफ आखरत की तरफ। ऐसा कलान, ऐसा कलान कौन, ऐसा कलान दो बोझ, दो बोझों से मुराद वही हैं इंस और जिन। ये नहीं कि ये सबसे ज्यादा भारी मखलूकात हैं, इनसे बहुत ज्यादा भारी और भी मखलूकात हैं, मगर फिर क्यों कहा गया तकलान, इसलिए कि इनकी अहमियत सबसे ज्यादा है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये मुकल्लफ हैं, इनके ऊपर तकलीफ का बोझ डाला गया हिसाब किताब की। तो ऐसा कलान हम तुम्हारे लिए जल्दी, सा है जल्दी ही फारिग होने वाले हैं, तुम्हारा हिसाब करने वाले हैं, यानी कयामत दूर नहीं है, हिसाब किताब शुरू होने वाला है। नफरुगु फारिग होने वाले हैं, क्या अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह क्या अभी मसरूफ है जो उसने फारिग होना है कुछ काम करने के लिए, या उसको एक काम, नफरुगु फारिग होना मतलब क्या होता है, यानी एक काम को बंद करके फिर दूसरा शुरू करना। जैसे हमारे हम करते हैं कि हम कहते हैं अच्छा अभी मैं बड़ी मसरूफ हूँ, अभी मैं फारिग होके आती हूँ, यानी पहले मैं ये काम मुकम्मल कर लूँ तो फिर मैं तुम्हारा काम करूँगी। ऐसा अल्लाह के लिए नहीं है, उसको ये ज़रूरत नहीं है कि वो बाकी कामों को बंद करे, कि लोगों का हिसाब इतना मुश्किल काम है कि उसके लिए अपने आप को फिर फारिग करे, ये मतलब नहीं है। बल्कि इब्ने अब्बास ने इसकी तफसीर में ये बयान फरमाया है कि ये एक धमकी है लोगों के लिए कि ठहर जाओ, अभी मैं सारी अपनी तवज्जो तुम्हारी तरफ करने वाला हूं कि तुम्हारा हिसाब किताब, मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होने वाला हूं, वरना अल्लाह को कुछ भी बंद नहीं करना पड़ता किसी और काम को करने के लिए। वो तो हम वक्त आप देखें सारे कायनात के निजामों को, आसमानों जमीन के निजामों को इस वक्त भी तो हम वक्त चला रहा है, ये नहीं कर रहा कि एक बंद हुआ तो फिर दूसरा शुरू हुआ, नहीं। रब्बिकुमा तुकद्दिबान, फिर तुम अपने रब की किन किन कुदरतों को तुम झुटलाओगे, ये भी अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ताला की कितनी बड़ी ये कुदरत है कि सब का हिसाब किताब एक वक्त में वो लेगा, और उसके लिए वो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। या माशर अल जिन्नी वल इंस, ए जिन्नो इंस के ग्रोह, इन इस्तता तुम, अगर तुम इस्ततात रखते हो, यानी अल्लाह तो तुम्हारे लिए अनकरीब हिसाब शुरू करने लगा है, लेकिन अगर तुम ताकत रखते हो ना तो जाओ भाग जाओ, भागो किनारों से, आसमानों के और जमीन के किनारों से भाग निकलो। तुम भाग नहीं सकते मगर एक सुल्तान के साथ, एक यानी जोर के साथ। यहां पे माशर अल जिन और इंस को चैलेंज किया गया है कि अगर तुम अल्लाह की कानून से, उसकी कुदरत से, उसकी जो हदूद हैं उसने तुम्हारे लिए कायम की हैं, उनसे निकल सकते हो ना, तुम अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हो, तो सब मिल जाओ और निकल के देखो कि तुम निकल सकते हो। इंसान को बेबस कर दिया, तो तुम्हारा कोई जोर नहीं है, यानी तुम समझते हो ना तुम्हारे पास बहुत जोर है, तुम अल्लाह के मुकाबले कर लोगे, या तुम नहीं आओगे क्यामत के दिन हिसाब देने के लिए, अल्लाह ताला तुम्हारा हिसाब करना चाहता है लेकिन तुम नहीं कराना चाहते, तुम अपने आप को आजाद समझते हो, बड़े ताकतवर समझते हो, अल्लाह से भागना चाहते हो, दूर भाग के देख लो, इस जिंदगी में तो इंसान भागता है ना अल्लाह से दूर, अल्लाह ताला कहते हैं जो भाग के देख लो, जमीन के किनारों से निकल जाओ, आसमान के किनारों से निकल जाओ, अपनी इस गैलेक्सी से निकल के देख लो, कहां जा सकता है। मैंने आपको बताया इंसान तो अभी पहले आसमान के नीचे ही है, अभी तो और ऊपर 6 आसमान है, हम तो इस पहले आसमान के नीचे की चीजों को ही नहीं जान सके, जान भी नहीं सके तो निकलना कहां है, हम तो ये चांद से आगे नहीं कदम रख सके, तो कहाँ जाएंगे? अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं जा सकते, इवन जिन्नात भी नहीं जा सकते। हम सोचते ना जिन्नात के पास बहुत ताकत है, पता नहीं वो कहाँ तक घूम आते, नहीं वो भी यहीं तक घूमते हैं। आगे वो जाएंगे तो आगे आ रहा है कि उनके लिए भी क्या है, वो भी नहीं जा सकते, उनकी भी लिमिटेशन है, वो भी इससे आगे गए तो जला मारे जाएंगे। और जब ज़िहाक फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन आएगा ना, तो अल्लाह ताला आसमाने दुनिया को हुक्म देंगे, अब वो अपनी चीज़ों समेट फट जाएगा और फरिश्ते उसके किनारे पर खड़े होंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला आसमाने दुनिया के साथ वाले आसमान के फरिश्तों को हुक्म देगा, वो भी आके हाजिर हो जाएंगे, ज़मीन वाले फरिश्ते भी हाजिर हो जाएंगे उस दिन। तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान के सब के फरिश्तों को अल्लाह ताला हुक्म देगा, वो सब जमा हो जाएंगे, सब सफ दर सफ खड़े होंगे। अल्लाह अकबर। तो तुम तो सोचते हो कि तुम बहुत ही बड़ी चीजें हो, बहुत ताकतवर हो, तो जाओ फिर जाओ, अल्लाह की पकड़ से निकल जाओ, भाग जाओ कहीं और, चले जाओ कहीं और, आजिज़ करके देख लो अल्लाह को कि तुम कर सकते हो नहीं कर सकते। इसके लिए बड़ा ही जोर चाहिए। और दूसरा माना इसका ये किया है, सुल्तान का इज़्ज़न चाहिए अल्लाह का। यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन क्यों दी गई, इल्ला भी सुल्तान, भाग सकते नहीं हो मगर सुल्तान के साथ भाग सकते हो, यानी अगर तुम्हारे साथ कुव्वत है, जोर है, गलबा है, ताकत है, फिर भाग सकते हो। और वो ये किस लिए एक्सेप्शन रखी गई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो परवाज फरमाई थी आसमानों के ऊपर तक, तो हम फिर कहें कि वो फिर क्या वो भी फिर नहीं जा सकेगा थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो फरमाया कोई जा ही नहीं सकता, कोई निकल ही नहीं सकता कतार से आसमानों के और जमीन के। तो फिर ये तो आयत बताती है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कैसे गए। तो यहां पे इसीलिए फरमा दिया गया इल्ला भी सुल्तान, जिसके साथ सुल्तान हो वो जा सकता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाज हुई थी, वो वहां तक पहुंचे थे। फिर तुमने रब की कौन कौन सी नियमतों को झुठलाओ। इस आयत के बाद ही अब आ रही है, यानी जहन्नुम की और आखरत की बातें शुरू होने वाली हैं। युरसिलु अलैकुम शुवाज़ मिन नार व नुहासुन फला तंतसिरान, छोड़ दिया जाएगा तुम पर शोला आग से और धुआं, फिर तुम ना मुकाबला कर सकोगे। ये भी जो जिन्नात का मैंने आपको बताया कि वो भी जब ऊपर जाते हैं तो उनके ऊपर भी यानी ये मारे जाते थे, शहाब भी और ये, तो तुम अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं हो, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। क़यामत के दिन भी कोई भाग नहीं सकेगा, आग के शोले होंगे और धुआं होगा, यहाँ पिघलावा तांबा उनके ऊपर उंडेल दिया जाएगा। अब ये मैदाने माशर से किसी ने भागने की कोशिश की उसके लिए भी हो सकता है, जो जिन ऊपर जाते हैं उनको भी मारे जाते हैं, तो तुम निकल कहाँ सकते हो, भाग कहाँ सकते हो। यहाँ पे भागने वालों को बताया गया ना, किधर भागोगे, जाओगे कहाँ, हर तरफ तो अल्लाह की बादशाहत है। फबी अय्य आला रब्बिकुम तुकद्दिबान, तुम अल्लाह की फिर कौन कौन सी कुदरतों को जुटलाते हो। यहाँ पे अल्लाह की कुदरत को तुम समझो कि अल्लाह की कुदरत कितनी है। यहाँ पे आला का माना इस तरह से हम समझें कि कुदरत के मानों में आया है, तो ये और दूसरी बात क्या है नेमत की, इसके अंदर फिर क्या बात है, यानी ये अल्लाह ताला का तुम्हें पहले से वॉर्न कर देना, ये बातें बता देना कि तुम बाद में ना पछताओ, ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। कोई आपको कह दे कि जी उस रास्ते पर आप जाएंगे तो वहां पे तो इतना ट्रैफिक है, जो जाता है स्टक हो जाता है, 6-6 घंटे से लोग खड़े हुए वहां पे, तो आप उसकी इतने शुक्र गुजार होते हैं, हाय तुमने कितना अच्छा मुझे बता दिया, अगर मैं जाके वहां पे फंस जाती तो हमारा क्या होता, तुमने तो मुझे दूसरा अच्छा रास्ता बता दिया। अल्लाह ताला इतनी बड़ी आग से बचाने के इंतजाम को फरमा रहे हैं, इतनी बड़ी वार्निंग दे रहे हैं, देखो ये काम ना करके आना वरना ये आग है, फिर कहीं भाग नहीं सकोगे। इंसान को तो शुक्र गुजार होना चाहिए, ये एहसान है अल्लाह का, उसने बता दिया। फैदन शक्त समा फकानत वर्दतन कद्दिहान, आसमान की हालत उस दिन क्या होगी, जमीन तो कूट कूट के बिल्कुल चूरा चूरा कर दी जाएगी ना, और आसमान क्या होंगे, वो कहना तो वर्दतन का दिहान, ऐसे होंगे जैसे सुर्ख गुलाब होता है और तेल की तिलछट की तरह या सुर्ख चमड़े की तरह, दोनों चीजें ध्यान में आती हैं। आसमान का रंग बताया गया है यहाँ पे। अगर आपसे कोई पूछे कि कयामत के दिन आसमान का रंग क्या होगा, अस्तग़फिरुल्लाह, तो सुर्ख होगा बिल्कुल। और देखें, ये जो इस वक्त आसमान का रंग है, ये बहुत सूदिंग है तबीयत के लिए, बहुत इंसान को सुकून देता है, बल्कि दिल करता रहता है कि आसमान की तरफ देखे जाए। लेकिन कभी आपने देखा है कि बाज़ दफ़ा सूरज जब गुरूब होता है तो मगरिब की तरफ बहुत सुर्खी होती है, वो सुर्खी भी इंसान को परेशान कर देती है। और कहाँ ये कि पूरा आसमान ऐसे हो जैसे सुर्ख खून होता है, जैसे गुलाब का रंग सुर्ख होता है, अब वो कितना हॉरेबल लगेगा। इमेजिन करके देखें कि ऊपर तबाही हो रही है और बिल्कुल रेड है आसमान, क्या हालत हो इंसान की। अब यही आला ये रब्बी कुमा तो कज़िबान। अब फिर सोचो, अल्लाहु अकबर, जिस रब ने आज इस नीले आसमान तले तुम्हें रखा हुआ है कि तुम इससे सुकून पा रहे हो, उस दिन ऐसा सुर्ख हो जाएगा। सोचो आज ही तुम कितने सुकून में बैठे हो, अगर आज अल्लाह सुर्ख कर दे वैसा तो क्या हो। फिर तुम अल्लाह की इस नेमत को नहीं समझते, इतनी सुकून है तुम्हारे लिए, कितना आराम है तुम्हारे लिए। आज देखते भी हो इसकी तरफ तो अच्छा लगता, तुम ये नहीं सोचते, ये क्या नेमत नहीं है तुम्हारे पास। फयौमा इज़िन ला युसअलु अन ज़म्बिही इंसुन वला जान, फिर उस दिन नहीं पूछा जाएगा गुनाह के बारे में किसी इंसान से और ना जिन से, यानी उससे नहीं पूछा जाएगा। क्या नहीं पूछा जाएगा? हम दूसरी जगह तो कुरान पाक में पढ़ते हैं कि इंसानों से पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा, और यहाँ पे कहा गया है कि नहीं पूछा जाएगा। तो असल में कयामत का दिन इतना लंबा है, किसी जगह तो सवाल होगा और किसी जगह सवाल नहीं होगा। जैसे सूरह कसस में भी है, वला युसअलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून, मुजरिमों से उनके गुनाहों के मुतल्लिक सवाल नहीं किया जाए। और दूसरी जगह है कि कसम है तेरे रब की, इन सब से ज़रूर सवाल होगा। तो इतना लंबा दिन है, किसी वक्त सवाल है किसी वक्त नहीं है। लेकिन जिस वक्त सवाल किया जा रहा है तो वो भी एक मुसीबत है, और जिस वक्त नहीं पूछा जा रहा कुछ भी तो वो भी एक मुसीबत है। और बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि जब जहन्नुम में डाला जाने लगेगा, फिर ये नहीं पूछा जाएगा क्यों किया तुमने ये, उनसे वजह नहीं पूछी जाएगी। अब बस खत्म हो गई बात, वो बताना चाहेंगे, वो चीखेंगे हमने इसलिए कर दी, हमारी ये मजबूरी, हमारी, उनसे पूछा ही नहीं जाएगा, उनसे बात ही नहीं की जाएगी। फबियही आला रब्बी कुमा तो कसीबान। फिर वहां पे देखें, ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला आज सब का आमालनामा तैयार फरमा रहे हैं, जिसके तहत ही सवाल जवाब होगा। ये भी एक नेमत है, किसी से ऐसे ही बिला वजह से किसी को जहन्नुम में नहीं डाल दिया जाएगा, किसी से कलाम बंद नहीं कर दिया जाएगा। युराफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, मुजरिम अपनी निशानियों से पहचान लिए जाएंगे, या सीमा का मतलब चेहरों से, अपने चेहरों से पहचान लिए जाएंगे। फयुखदु बिन्नवासी वला कदाम, तो वो पकड़े जाएंगे अपनी पेशानी के बालों से और अपने कदमों से। मुजरिम कैसे चेहरों से पहचाने जाएंगे? जैसे मोमिन चेहरों से पहचान लिए जाएंगे, मोमिन के वुजू के निशान होंगे, जो पहचान होंगे उनकी कि ये है उम्मती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके आज़ा चमक रहे होंगे, उनके चेहरे रोशन होंगे, सफ़ेद होंगे। इसी तरह मुजरिमों के चेहरे स्याह होंगे, वहशत होगी, नीले होंगे, उनके चेहरों के ऊपर जो असरात होंगे वो बता रहे होंगे। और बाज कहते हैं कि उनके चेहरों पे या उनके आज़ा पे वुजू के निशान नहीं होंगे तो पहचान लिए जाएंगे कि ये काफिर थे इस उम्मत के। अल्लाह अकबर। तो ये जब निशानियों से पहचान लिए जाएंगे मुजरिमीन, तो इनको पकड़ा जाएगा, इनको पकड़ा जाएगा और इनको जहन्नुम में डाला जाएगा। और कहाँ से पकड़ा जाएगा? पेशानी के बालों से। आपको पता है ये जो चेहरा होता है इंसान का, ये उसकी इज्जत होती है। कोई बाजू से खींच के भी लेकर जाए ना धक्के देते हुए, तो उसमें भी इंसान जिल्लत महसूस करता है। और कहाँ सोचे किसी को अगर आप देखें कि उसके ये पेशानी के ऊपर, यानी जो फोरहेड के ऊपर, ये जो जहाँ से बाल शुरू होते हैं हमारे, यहाँ से किसी को पकड़ा जाए और खींचा जाए तो उसकी हालत क्या हो जाए? सिवाय चीखो पुकार के तो और कुछ नहीं सुनेगा। बाजू से पकड़ के लेकर जाएंगे तो शायद इतना नहीं कोई चीख नहीं चिल्लाएगा, लेकिन यहां से पकड़ा जाएगा तो कितनी जिल्लत होती है उसके अंदर। और जो कदमों से भी पकड़ लिया जाए, बास कहते हैं कदमों को पेशानी के बालों के साथ जोड़ के बांध के और फिर खींचा जाएगा। बास कहते हैं पेशानी के बालों से और कभी पैरों से खींचा जाएगा। और पैरों से खींचना भी कैसा होता है? किसी को अगर ऐसा देखें जो हम बहुत, अल्लाह ताला माफ करे, जो ये बहुत टॉर्चर की कोई वीडियोस भेज देते हैं लोग, और ऐसे उसके अंदर देखते हैं कि किसी को खींच के ले जाया जा रहा है, देखा भी नहीं जाता। यकीन करें कि वो सीन देखना अपने फोन पे भी ना वो आसान नहीं है। कहां कोई इसके अंदर इस जिल्लत में मुब्तला हो। जहन्नुम का अजाब तो बाद में दिया जाएगा, जो यहां से ही उनको खींचा जा रहा है वो ही काफी है उनकी जिल्लत के लिए। अल्लाह अकबर, तब उनसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मुजरिमों में हमें शामिल ना फरमान। देखो दुनिया में इंसान जरा जरा सी बात पे सोचता है, हाय मेरी बेइज्जती हो गई, फलां के सामने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, फलां खड़ा हुआ था आपने मुझे ऐसे क्यों बुला लिया, आपने मेरे से ऐसे बात क्यों कर ली। और वहां की जिल्लत देखो कि ये भी दुनिया के बड़े बड़े मुअज्ज़ज लोग होंगे, ये भी दुनिया के बड़े बड़े काबिल एहतराम और बड़ी कुर्सियां रखने वाले लोग होंगे, बड़ी बड़ी बेगम साहिबात होंगी, बड़े बड़े साहब जी होंगे, और उस दिन जिल्लत कैसी होगी? जिसको उस दिन अल्लाह ताला ऐसी जिल्लत से बचा ले, उसके लिए कितनी बड़ी नेमत है। जिसको अल्लाह ने ये दुनिया में बता दिया, उसके लिए कितनी बड़ी नेमत है। और काफिर के साथ जब ये होगा तो ये मोमिन के लिए नेमत है, इसलिए कि यही वो काफिर थे जिन्होंने दुनिया में सताया था और दीन पे चलने नहीं दिया था। तो अल्लाह अहले ईमान के दिल को ठंडा करेगा, इसलिए फरमा दिया ये भी एक नेमत है। हादिही जहन्नम उल्लती युकद्दिबु बिहा अल-मुजरिमून, ये है वो जहन्नम जिसको झुठलाते थे मुजरिम। यही आयत आई थी ना सूरह यासीन में, कहते थे ना कि दुनिया में कहा करते थे ये क्या आग की बातें करते हो, अजाब की बातें करते हो, कोई वहां पे अजाब अजाब नहीं होगा, ये ऐसे मौलवियों के ढकोसले हैं, ऐसी बातें हैं, ऐसी बनाई हुई है डराने के लिए, बस डराते रहते हैं, कुछ नहीं होता वहां पे, कुछ नहीं है ऐसा, कोई जहन्नुम आमनुम नहीं है। उस दिन जिस जहन्नुम का इनकार करते थे मुजरिम, उसके पास खड़ा करके पूछा जाएगा, यही थी ना वो जहन्नुम जिसका तुम इनकार करते थे, यही थी ना जिसको तुम नहीं मानते थे। या तूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन, अब गर्म पानी, खोलते पानी और आग के दरमियान चक्कर लगवाए जाएंगे। यानी इतनी प्यास लगी, जब इंसान कब्रों से उठेंगे ना तो सबसे पहली चीज जिसकी, जिस तकलीफ में वो मुब्तला होंगे, वो प्यास की शिद्दत होगी। प्यास इस कदर ज्यादा लगेगी, तभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज से पानी मिलेगा मोमिनों को, उनके उम्मतियों को, क्योंकि प्यास बहुत ज्यादा होगी। और सबको ही प्यास लगी होगी, चाहे वो काफिर हैं मोमिन हैं, लेकिन जो पानी उसका पी लेंगे उनको फिर कभी नहीं प्यास लगेगी। तो वहां पे भूख की नहीं बात की गई, प्यास की बात की गई। اس قدر زیادہ بڑا عذاب پیاس کا ہوگا، اور پھر کہاں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، جو اتنی شدید آگ ہے، اب وہاں پہ پینے کی چیز کوئی اور ہے نہیں، جو مشروب ان کو دیے جائیں گے، اب پینا تو ہوگا، اب جو مشروب جن تک پانی تک لے جایا جائے گا، آگ کے اندر جو پانی ہے وہ بھی کون سا پانی ہوگا، خود سوچ لینا، یہ پانی تو نہیں، دنیا والا پانی تو نہیں ہو سکتا، یہ تو آپ بوائل کرتے ہیں تو یہ تو ایویبریٹ ہو جاتا ہے 100 ڈگری سینٹی گریڈ، اس آگ وہ جو خود آگ کتنے سینٹی گریڈ ہے واللہ عالم، اس آگ سے تو بہت زیادہ ہے، 70 گنا زیادہ وہ آگ ہے، اب مجھے بتائیں کہ اس آگ میں یہ پانی تو رہ ہی نہیں سکتا، پھر اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ پتھروں کو پگھلایا ہوا ہے جو پانی بن گئے ہیں، کوئی اور دھات ہے جس کو پگھلا کے پانی بنایا گیا ہے، لکوڈ فارم میں کیا، پانی تو نہیں کہہ سکتے، لکوڈ فارم میں کیا گیا، اب اس لکوڈ فارم کو وہ پینا چاہیں گے تو اس کے ایک گھونٹ لیں گے، اس سے ان کا سارا گوشت پوشت گل سڑ کے گر پڑے گا نیچے، آنتیں کٹ کے پیٹ کے راستے قدموں میں پڑ جائیں گے، تو وہ پینا بھی عذاب ہے، یہ نہیں کہ وہ ایک تھوڑی دیر کے لیے ایک ان کی راحت کا سامان ہو جائے، نہیں، وہ پینا بھی عذاب ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، اللہم اجرنا من النار، اب ان سے تنگ آ کے کہیں گے اب ہمیں آگ کی طرف ہی لے جاؤ، آگ کی طرف لے جائے جائیں گے، پھر وہاں سے پیاس لگے گی، پھر اس طرف لائے جائیں گے، پھر وہاں لے جائے جائیں گے، وہ اسی طرح چکر کاٹتے ہی جائیں گے، یہ چکر ختم نہیں ہوں گے، سر کے اوپر بھی کھولتا پانی ڈالا جائے گا اور پینے کے لیے بھی وہی کھولتا پانی، پانی مطلب لکوڈ، تاکہ اب یہ نہ سوچیں کہ یہاں کا پانی ہوگا، شاید وہ بوائلنگ واٹر دے دیا جائے، نہیں، وہ لکوڈ ہے مگر کھولتا ہوا ہے، کس چیز کا لکوڈ ہے وہ نہیں پتا، وہ جو بھی لکوڈ رہ سکتا ہوگا آگ پہ، استغفر اللہ، اب یہی علی ربی کما تکذبان، جہنم نعمت نہیں ہے، مگر پھر اس کے لیے کیوں ایسے کہا گیا، تاکہ لوگ بچ جائیں، تم اس کے بچنے کا انتظام کر لو، دیکھو اللہ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ وہاں پہ ایسی جہنم ہے، وہ تمہیں یہ حالات بتا رہا ہے، او پھر بھی کیا تم اس کے لیے تیاری نہیں کرو گے کہ اس سے بچ جاؤ، کیا پھر بھی تیاری نہیں کرو گے، پھر بھی نہیں مانو گے، پھر بھی سمجھو گے نہیں، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے تمہارے اوپر، تمہیں اس دنیا میں بتا دیا، اور یہ تو ابھی جو پانی ہے، یہ تو ابھی نزول ہے، یہ تو ابھی پہلی مہمانی ہے ان کی، ابھی آگے کے جو عذاب ہیں، آگے کے جو کھانے پینے ہیں، وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کیسے ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہاں تک تلاوت سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں، تلاوت لگا یہاں تک،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان كان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان
جتنے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی باتیں بتائی ہیں وہ بھی ایسی ہیں کہ انسان ان کا تصور اس دنیا میں نہیں کر سکتا اور جو جنت کی باتیں ہیں ان کو بھی اگر ہم جتنا بھی چاہیں کہ یہاں پہ ہم کسی طرح امیجن کر لیں تو نہیں کر سکتے دونوں ایکسٹریم پوائنٹس ہیں اور یہ جو آپ نے ابھی پڑھا ہے کیا آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں پہلی آیت سے لنک بنا سکتے ہیں نا اب کہ واقعی اللہ تیری کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہمیں یہاں جگا دیا تو نے ہم تو سوئے ہی رہ جاتے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے تو وہ جنتیں یعنی کیا مطلب ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ اس دنیا میں اس نے ڈر ڈر کے زندگی گزاری کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے اس کو حساب کتاب کا خوف ہوتا تھا اس کو یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی پکڑ نہ آ جائے वो गुनाह का इरादा करता भी था तो अल्लाह की याद ऐसी होती थी कि वो उसको उससे बाज रखती थी। तो ऐसे इंसान के लिए जो डरता है अपने रब के आगे खड़े होने से, यानी उसको खौफ है तो किस चीज का, इसका नहीं कि लोग क्या कहेंगे, उसको खौफ है इसका कि मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा। तो रब के सामने खड़े होने का डर होना ना बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है जिसको मुयस्सर आ जाए। क्योंकि ऐसे ही बंदे को दो जन्नतें मिलेंगी, और जो दुनिया में डर गया, मैंने आपको बताई थी यह हदीस पहले, दो खौफ और दो अमन अल्लाह ताला जमा नहीं करता। जो दुनिया में डर गया अल्लाह ताला उसको आखरत में बेखौफ कर देगा, उसके लिए तो दो जन्नतें हैं। और जो दुनिया में बेखौफ होके रहा, उसको परवाह नहीं है, वो डरता नहीं है अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह के अजाबों से, अता होंगे ये किसी के लिए होंगे, मेरे लिए कोई बात नहीं, उसको अल्लाह ताला वहां डराएगा। तो इंसान अब देख ले कहां डरना है उसने, जो यहां खौफजदा हुआ, जो यहां जवाबदेही से डरा कि अल्लाह की अदालत में कैसे जाऊंगा, कैसे पेश होऊंगा, उसके लिए दो जन्नतें अल्लाह ने रखी हैं। और ये देखें दो जन्नतें क्यों कही गई, एक तो ये कि वैसे भी इस सूरत का असलूब है, दो जन्नतें तस्निया आ रहा है, तस्निया आ रहा है, जिन्नात के लिए और इंसानों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग जन्नतें होंगी उनके मुताबिक, उनके जो चीज़ें उसके मुताबिक। और वैसे भी कहा जाता है कि ये बहुत सारी जन्नतों की भी बात हो सकती है, दो जन्नतें उसको कुरान में और जगह पे भी दो कह के बहुत सारी भी मुराद लिया गया। फबियय अलाई रब्बी कुमा तुकत्तिबान, देखो फिर अल्लाह की ये भी कितनी बड़ी नेमत है कि जो दुनिया में डर गया उसके लिए उसने जन्नत रखी। रवाता अफनान, हरी भरी डालियों वाली, कि प्रॉपर्टी क्या है, जन्नत की प्रॉपर्टी मिलेगी। और वहां पे क्या है चीज, उस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन क्या है वो अब बताई जा रही है, ये है साबिकून को मिलने वाली जन्नत। जवाता अफनान यानी जो जहां पे ऐसे दरख्त होंगे जिनकी शाखें आपस में मिली हुई, इतनी सारी ब्रांचेज होंगी जो आपस में गुत्थम गुत्था हुई हुई। जन्नत के जो दरख्त है ना वो फलदार भी होंगे लेकिन कांटे नहीं होंगे, और इतने घने होंगे, उनके साए बहुत तवील होंगे, लंबी लंबी शाखें होंगी और हरी भरी होंगी, इतने तवील होंगे कि घुड़सवार 100 साल तक भी चलता रहे तब भी उसका साया ख़त्म ना हो, और सारे दरख्तों के तने सोने के होंगे। सुभान अल्लाह। और देखें अल्लाह ताला ने फरमाया फबी अय अलाई रब्बी कुमा तो कजीमान, फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को जुटलाओगे, तुम रियलाइज नहीं करते अल्लाह ताला तुम्हें छोटे से अमल के ऊपर भी तुम्हें वो जन्नतें देने वाला है जिनके अंदर ऐसे दरख्त हो, जिसमें ऐसे साए हो। इंसान का अमल तो किसी काबिल भी नहीं है, वो कितना भी अमल कर ले, सारी जिंदगी भी सजदे में पड़ा रहे, अल्लाह का हक भी नहीं अदा कर सकता, जितना कुछ उसने दिया हुआ उन नेमतों का हक भी नहीं अदा कर सकता। अल्लाह का हक अदा करना तो क्या, एक नेमत का भी नहीं हक अदा कर सकता। और अल्लाह ताला उसको इनाम के तौर पे कहाँ तक वो नेमतें देंगे जिनका तसव्वुर भी इस दुनिया में नहीं हो सकता। फीहिमा आइनान तजरियान, और उस उन जब उन जन्नतों में जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, पानी कैसा होगा, चश्मे बहते हुए होंगे, ये चश्मे ना खुश्क होंगे ना रुकेंगे, जारी होंगे। और हमें हदीस से पता चलता है कि वहां पे तस्नीम का चश्मा होगा और सलसबील का चश्मा होगा। ये भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमतें हैं कि अल्लाह ताला ने वहां पे चश्मे जारी कर दिए, हर एक के लिए चश्मे होंगे। ये चश्मे दुनिया के चश्मों की तरह नहीं होंगे, इसकी कंकरियां सुर्ख याकूत की होंगे और सर सब जुमरद की होंगे, इसको उसमें कीचड़ ऐसा नहीं होगा जैसे नीचे कीचड़ होता है ना, मट्टी होती है, मुश्क होगी उसकी जगह। अल्लाहु अकबर। ये उन लोगों के लिए थे, ये उन लोगों के लिए होंगे जिनकी आंखों से दुनिया में अल्लाह के खौफ से आंसू बहते थे, वहाँ पे भी उनको चश्मे मिलेंगे। ये दुनिया के चश्मे बहते थे ना अल्लाह के खौफ में, अल्लाह से के सामने खड़े होने के खौफ से, तो अल्लाह वहाँ भी चश्मे दे रहा है। सुभान अल्लाह। तो ये उन चश्मों का हाल होगा जिसके इसका पानी कैसा होगा, जिनकी मट्टी ऐसी है तो उनका पानी कैसा होगा, जिसके कंकर ऐसे हैं याकूत के और जमरद के, तो पानी का अंदाजा तो हम लगा ही नहीं सकते। और देखें कोई भी दुनिया में भी कोई अपना महल बनाता है तो उसके महल में गार्डन ज़रूर होता है और गार्डन में पानी ज़रूर होता है, कहीं कोई झरना होता है, कहीं कोई छोटा सा उसने तालाब बनाया होता है या उसने कोई पूल बनाया होता है या कुछ। पानी के बगैर इंसान की तसल्ली नहीं होती, ऐसे उसको मज़ा नहीं आता। आप डिफरेंट रिजॉर्ट्स की भी देखें, वो कभी एड्स दिखाते हैं तो कहीं समंदर के किनारे हैं, कहीं आबशारे हैं, कहीं कुछ हैं। पानी लाजमी होता है कि इंसान की फितरत है कि वो पानी से सुकून हासिल करता है और ग्रीनरी उसको अच्छी लगती है। कोई महल ऐसा नहीं होता कि जिसमें सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग खड़ी हो और उसका कोई गार्डन ही ना हो, बल्कि बिल्डिंग से भी ज्यादा बड़े बड़े गार्डन्स रखे होते हैं। अल्लाह को पता है ना कि इंसान किन चीज़ों से खुश होता है। भाभी यही आलाई रबी कुमार तो कतिबान फी ही मामिन कुल्लिफा की हत इंजाऊ जान, इसमें फल होंगे जो दो दो किस्मों के होंगे। अब वो दो किस्में कैसी होंगी, यानी हर फल की लज्जत और जायके मुख्तलिफ होंगे, कैसे टेस्ट होंगे, अल्लाह को पता है। और ये भी कहा जाता है कि दो इसलिए कहा गया कि दुनिया में भी देखें एक सीजन के अंदर एक फल का पहले कच्चा होता है फिर उसके बाद पक्का होता है, तो दोनों के टेस्ट डिफरेंट होते हैं। आम को आप देख लें, जब कच्चा होता है तो वो कच्चे कच्चे का कैसा टेस्ट होता है और जब पक्का होता है तो तब कैसा टेस्ट होता है। या दुनिया का जायका वैसा जायका एक में होगा और दूसरे में किसी और तरह का जायका होगा। तो दो किस्म के फल होंगे, ये भी हो सकता है एक ताज़ा और एक खुश्क, लेकिन हर फल जायकादार होगा। दुनिया में तो कभी खट्टा भी हो जाता है, कभी कड़वा भी हो जाता है। सब यही आला रब्बी कुमा तो कसीबान मुत्तकीन आला फुरुशिन, तकिया लगाए हुए होंगे ऐसे फर्शों पे, ऐसे मुत्तकीन में है कि यानी तकिया लगाए होंगे, रिक्लाइनिंग पोजीशन में होंगे। और रिक्लाइनिंग पोजीशन जो होती है ना वो सोने के लिए नहीं होती, ना वो अलर्ट पोजीशन होती है, बल्कि वो कैसी होती, यानी इंसान जब रिलैक्स करने लगता है तो आपने वो बीच चेयर्स भी देखी हैं, वो रिक्लाइनिंग पोजीशन में होती। लेटने की हालत इसलिए नहीं कि सोने की तो वहाँ पर ज़रूरत है नहीं, और अलर्ट होने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि कोई काम ही नहीं, तो रिलैक्स होंगे। ये वो हैं जो दुनिया में मेहनतें कर चुके, अब रिलैक्स कर रहे हैं, अब वहाँ पे कोई मेहनत नहीं है। वो ऐसे फर्शों के ऊपर होंगे, यानी ऐसे बिस्तरों पे होंगे जिनके बताइन हमिन इस्तबरक, जिनके अस्तर जो होंगे वो मोटी तांते के होंगे, यानी ऐसा दबीज रेशम होगा, ऐसा मोटा रेशम होगा उसके होंगे। और रिवायात में इसका आता है कि जिसमें सिल्क के साथ गोल्ड की डेकोरेशन होगी, ये इस उसका यानी इनर लेयर होगी। इनर लेयर हमेशा किसी भी गद्दे की आप देख लें, किसी बिस्तर की, वो उसमें चीज़ें भर देते हैं, कोई फोम भर दिया, कोई ऐसे, हमेशा ऊपर की ज़्यादा खूबसूरत रखते हैं, अंदर का तो कुछ भी भर देते हैं। अगर किसी बिस्तर का बताइन ऐसा हो तो सोचो कि फिर उसका जो अपर लेयर, जो आउटर लेयर होगी वो कैसी होगी। इस वजह से इनर लेयर का बताया गया, आउटर लेयर तुम समझ ही नहीं सकते, तुम्हें दुनिया में बताया जाए तुम जान ही नहीं सकते। ओके, उसकी मिसाल ही कोई नहीं, चलो इनर की मिसाल दे दी, लेकिन वो भी दुनिया की सिल्क जैसी थोड़ी है। दुनिया की सिल्क रेशम का कीड़ा बनाता है, वहां की सिल्क तो कीड़े नहीं बनाएंगे। तो जिसका इनर लेयर ऐसा है, बाहर का इसलिए नहीं बताया तुम समझ पा ही नहीं सकते, मिसाल ही नहीं है कोई। वह जनल जन्नतई निदान, और फल होंगे जो ऐसे झुके में होंगे, यानी इंसान को उठना नहीं पड़ेगा, लेटे लेटे रिक्लाइन पोजिशन में ही उनको तोड़ लेगा। दूर नहीं होंगे, दूर वो तो दूर कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, वो जब दूर होता है तो जब रीच में ही नहीं है तो क्या फायदा। ये उनकी रीच में होंगे और पके हुए फल होंगे। फबी अला रबी कुमा तो कसे मान के तुम अपनी रब की कौन कौन सी नियमतों को झुटलाओगे। फी हिन्ना, फी हिन्ना दोनों बागों के अंदर, फी हिन्ना कासिरात तर्फ, ऐसी निगाहें झुकाने वाली होंगी। लम यतमिस हुन्ना इंसुन कबलहुम वला जान, जिनको ना कभी छुआ होगा किसी इंसान ने और ना जिन ने। ये कौन सी निगाहें झुकाने वाली होंगी, ये हूरों की बात है जो अपनी चॉइस से अपनी निगाहें झुकाने वाली होंगी, यानी उनको अपने शौहरों के अलावा कोई और पसंद नहीं होगा, किसी और की तरफ नजर नहीं उठाएंगी, इतनी शर्मो हया वाली होंगी। ये उनकी हया की तरफ इशारा है जो औरत की बहुत बड़ी खूबी होती है, और ये भी खूबी होती है कि उसको अपने शौहर से ज्यादा कोई प्यारा ना हो, ये भी उसकी हया की निशानी है। ये इधर उधर नहीं किसी औरों को देखती फिरे, किसी औरों को पसंद करती फिरे, ललचाई भी नजरों से किसी को देखे, नजरों की हिफाजत करने वाली होंगी, इतनी वफादार होंगी अपने शौहरों की, उनको इनसे पहले किसी ने नहीं छुआ होगा, ना किसी इंसान ने, ना यानी किसी ने उनको ना देखा, ना उनकी झलक देखी, ना किसी ने उनको छुआ। ये सिर्फ अपने शौहरों की मुंतजर होंगी, उन्हीं के लिए ये सजाई बनाई गई होंगी। अब बाज लोग इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा, आदमी तो बहुत हंसते हैं और मजाक करते हैं, हालांकि ये मजाक करने वाली बातें नहीं हैं। औरतें ऐसी बातों के ऊपर जल बुन जाती हैं कि ये क्यों बात बताई गई और हमें फिर क्या मिलेगा, कई औरतें ये पूछती हैं, उनको ये बातें पसंद ही नहीं आती। एक तो इसमें ये बात समझ लें कि अल्लाह ताला को पता है कि किसकी कमज़ोरी क्या है, किसको क्या चाहिए, कौन किस चीज़ से खुश होता है। हम कहते हैं कि जो उनको मिला बस वो हमें मिलना चाहिए, चाहे वो हमारी ज़रूरत है या नहीं है, बस हमें मिल जाना चाहिए, क्योंकि उनको मिल रहा है। अरे भाई, उनको मिले तो वो उनकी जरूरत है, औरत की जरूरत एक आदमी से पूरी हो जाती है, उसको बहुत सारे आदमी नहीं चाहिए, उसके लिए एक आदमी काफी होता है, मर्द को एक औरत से उसकी तस्कीन नहीं होती, अल्लाह को पता है और वो उसकी फितरत में ये चीज है, अल्लाह ने उनको पैदा किया, अल्लाह को पता है। अल्लाह आलम हूं तुम ला तालम, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते किसको क्या देना है। तो फिर औरतें उनकी रीस में कि हमें वैसा मिलना चाहिए जैसा वो है, ये भी नहीं सोचती कि ये तो हया के तकाजे के भी खिलाफ है, ये तो हया के भी खिलाफ है। अल्लाह ताला वहां पे औरतों को भी खुश कर देगा, जो जन्नती औरतें होंगी, ऐसे नहीं है कि वो खुश नहीं होंगी। और वो बस दुनिया में जैसे कोई औरत अपने शौहर को देख ले किसी के साथ तो वो जल भुन जाए और वो उसके वो मतलब जासूसियां करवाए और उसकी जिंदगी हराम हो जाती, पता नहीं वैसे ही वहां पे हो जाना, नहीं ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला का वादा है कि वो सबको खुश करेगा, जो जन्नती होंगे वो खुश होंगे। और जन्नत में ये भी हदीस में आता है, जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा, कोई सिंगल नहीं होगा, सबके जोड़े होंगे, तो औरतों के साथ भी जोड़े होंगे। वो कौन होंगे, वो जन्नती मर्द हैं या दुनिया के मर्द हैं या क्या है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। अगर जो दुनिया के उनके मर्द थे, अगर उनके साथ ही वो खुश थी तो वो उनको वो मिल जाएंगे और अपने जोड़ों से वो मुतमईन होंगी। हमें ये नहीं फिक्र होती कि हम जन्नत में पहुंच जाए, हमें ये ज्यादा फिक्र है कि भाई वो तो वहां पे उनको ये मिलेगा तो फिर इनको क्यों नहीं मिल रहा। तो ये बाज दफा औरतें इतनी बुरी बात कह देती हैं कि ऐसी जन्नत का फिर क्या फायदा, अल्लाह ताला माफ करे, तो फिर ऐसी जन्नत नहीं चाहिए तो फिर दूसरी जगह तो वहां पे जहन्नुम ही है और कुछ जगह नहीं है। हम ये भी नहीं सोच रहे होते हम किसकी बात के ऊपर एतराज कर रहे हैं, ये सोचते नहीं कि ये किसका कलाम है, किस पे नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। कोई कहते हैं ये क्या बात हुई, फिर तो ये क्या बात हुई, किसको सुना रहे हो, किसको कह रहे हो, अल्लाह को। अल्लाह ताला के जैसे बाकी अहकामात और जैसे बाकी बातें हम खुशदिली से मानते हैं, इस तरह ये भी हमें माननी है और ये समझना है कि अल्लाह को पता है, मुझे नहीं पता। और पहले तो हम ये इतनी फिक्र क्यों करते हैं कि वहां पे उनको ये मिल जाना है, मुझे ये नहीं, हमने ये सोच कैसे लिया कि कन्फर्म हो गया हमारा वहां जाना। पहले तो ये फिक्र करें ना अपनी कि वहां पे पहुंचना है मुझे, अगर मैं वहां पहुंची तो फिर देखी जाएगी, तब पता चल जाएगा कि किसको क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता और कौन किससे खुश होता है। पहले पहुंच तो जाए, ऐसे ऐसे लोगों को इस पे बहस करते हुए देखा जिनको जन्नत की तो कोई फिक्र नहीं, अहूरों की फिक्र बहुत ज्यादा है, आदमियों को भी और औरतों को भी। अमल तो अपने लेकर आओ ऐसे जो जन्नत में ले जाने के काबिल हो। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हम जन्नत की हूरों पर फखर करेंगे क्योंकि हम रोजे रखते थे रमजान के, हम इबादत करते थे अल्लाह की। जो जन्नती औरत होगी उसके उसको हूरों के ऊपर फजीलत होगी क्योंकि हूर जो है अल्लाह ने जन्नत की एक लज्जत बनाई है, ठीक है, एक लज्जत है आदमी के लिए, एक इंजॉयमेंट का सामान बनाया, सामान है समझ लें, जैसे बाकी चीजें एक सामान है इस तरह ये औरतें भी एक उनके लिए लज्जत का सामान है। लेकिन जन्नती औरत का उसके साथ क्या मुकाबला, वो तो खुद इंजॉय करने के लिए आई है, वो तो खुद लज्जत पाएगी वहां पर, जबकि हूर जो है वो इंजॉय करने के लिए नहीं है वहां पे, वो तो सामान है एक। जन्नती औरत को तो खुद लज्जतें मिलेंगी, जन्नत उसके लिए बनाई होगी, एक जन्नत उसकी भी होगी, तो एक सामान है वहां का जैसे बाकी सामान है और एक खुद जन्नत की मकीन है, दोनों में कितना फर्क है। फिर क्या जरूरत है कंपैरिजन करने की, खुद को उन औरतों के साथ कंपेयर करें, कोई कंपैरिजन नहीं बनता। अल्लाह ताला इसको रिवॉर्ड कर रहा है इस जन्नती औरत को कि ये लो जन्नत तुम्हारे लिए, और वो जन्नत की एक चीज है। तो फबी अला रबी कुमा तो कजीबान, जो ऐसी पाकीजा औरतें जिनको वहां मिलेंगी तो ये भी अल्लाह की नेमत है जिसने दुनिया में अपनी नजरों को बचा के रखा, अपने हया के साथ चला और दुनिया में अपने आप को बुराई से जिना से बचाया। अल्लाह ताला ऐसी औरतें उसको वहां पे अता करेगा। का अन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, गोया के वो याकूत है और मरजान है, यानी याकूत रूबीज को कहते हैं और मरजान मोती, यानी उनकी ब्यूटी ऐसी होगी कि याकूत रेड होता, सॉरी रूबीज जैसे याकूत जिसको कहते हैं वो रेड होता है, तो उनका हुसन ऐसा होगा। आप देखें कि औरतें भी अपने चेहरे के ऊपर लाली लगाती हैं उस तो खुद को खूबसूरत करने के लिए, और मोती जैसे उनकी स्किन या उनके कॉम्प्लेक्शंस या वैसी सफाई सुथराई होगी, वैसी शफाफ होंगी। अब यही आला रब्बी कुमातु कतीबान हल जजाउल एहसानी लल एहसान, क्या एहसान का बदला सिवाय एहसान के कुछ हो सकता है। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं जो भलाई तुमने की, जो नेकी तुमने की, इसका बदला तुम्हारे लिए भी एहसान की सूरत में ही तुम्हें मिलेगा। सुभान अल्लाह, इससे पता चलता है कि कोई किसी के साथ भी नेकी करे तो दूसरे को भी चाहिए कि जवाब में उसके साथ हमेशा नेकी करे, क्योंकि ये एक असूल अल्लाह ताला ने बता दिया कि नेकी का बदला नेकी ही है। ये ना करो कि तुम्हारे से कोई नेकी करे तो उसके बाद तुम उसकी बुराइयां करते फिरो। अब यही आला रब्बी कुमा तो कतीबान व मिन दूनी हुमा जन्नतान, और अब ये असहाबुल यमीन के लिए इसके अलावा भी दो जन्नतें हैं। फबी अय्या आला रब्बी कुमा तो कसीबान, लेकिन आप देखेंगे ये दो जन्नतें और उनका कंपैरिजन करिएगा कभी साथ साथ इन दोनों की आयतों को रख के, जो भी इसकी नेमतें और जो वहां की नेमतें, और फिर देखिएगा कितना फर्क है। मुदहामतान, ठीक है पास तो ये भी हुए लेकिन अब इनके लिए क्या है, नहायत सब्ज बाग है, वो उनकी तो डालियां मिली हुई थी आपस में इतने घने थे। फबी अय्या आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। ये भी इनके लिए शुक्र है कि जहन्नुम की आग से बच गए, और देखो यहाँ पे अल्लाह ताला ने दाखिल फरमा दिया। फीहिमा आयनानि नद्दाखतानि, इसमें भी दो चश्मे हैं, लेकिन वो चश्मे क्या थे, वो जारी थे। ये चश्मे क्या है, वहीं पे बबल्स बबलिंग कर रहे होंगे। सुभान अल्लाह, यानी वहां के और यहाँ के चश्मों में भी फर्क है। अल्लाह अकबर, जो चश्मा जारी होता है ना वो ज्यादा ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन इन चश्मों की फुहार होगी जो जन्नत को मुअत्तर करेगी। जैसे समझ लें कि एक एयर फ्रेशनर या एक ये भी एक खुशबू है वहां की। अब यही आला रब्बी कुमा तो कज़िबान फीहिमा फाकिहतुन व नखलुन व रुमान, और यहाँ पे ये फल होंगे, खजूर के भी होंगे और अनार के भी होंगे। खास तौर पे इन दो फलों की जिक्र किया गया, वहां पे क्या था, अनलिमिटेड फल होंगे, इतने फल होंगे, दो दो तरह की उनकी किस्में होंगी, और दो के अंदर भी बाज दफा कसरत का माना होता है, तो बहुत कसीर फल होंगे। तो यहाँ पे तीन फलों की बात है, ये नहीं कि और नहीं कोई फल होंगे, ये बात नहीं है, मगर खास उल खास इन दो फलों की इसलिए बात की गई कि इनकी जो एक तो अरब लोग जिनको जानते भी थे, और इनका जो टेस्ट और इनका जो वो होगा, ये खास फल है खास तौर पे। जैसे खजूर के बारे में बताया गया हदीस में आता है कि ये वो मटके के बराबर होगी, दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठी और मक्खन से ज्यादा नरम, ठीक है, ऐसी होंगी। तो हर एक ही फल मुयसर होगा, लेकिन ऑब्वियसली उनके जैसा तो नहीं, बराबर का तो नहीं है, और तमाम फल गुठली के बगैर होंगे। जब एक फल तोड़ेंगे तो वहां पे दूसरा लग जाएगा। लेकिन ये खास तौर पे जन्नत के फल हैं, अंगूर है, अनार है, खजूर है, इंजीर है, इनका जिक्र आता है। और फाकिहा से मुराद सेब भी लिया गया और मेवे भी लिए गए कि वो भी हो सकते हैं। कभी यही आला रबी कुमार तो कदीबान फी हिन्ना खैरात उन हिसान, इनमें होंगी अच्छी औरतें जो खूबसूरत होंगी, यानी बड़ी अखलाक वाली होंगी। और खैर शर का ऑपोजिट है, राइट, खैर, तो खैर में ये खैरात हैं, यानी इनमें कोई बुराई नहीं होगी, इनमें कोई ऐसा नहीं होगा, कोई निजासत हो, कोई गंदगी हो, कोई हैज हो, कोई नापाकी की चीज हो, या इनर तौर पे जो शर होता है, हसद, बुगज, कीने, ऐसी चीजें कुछ भी नहीं है उनके अंदर। खूबसूरत भी हैं और खूब सीरत भी होंगी, अखलाक वालियां भी होंगी, मोहब्बत करने वालियां भी होंगी। अभी यही आला रबी कुमा तो कदीबान हूर उन मकसूरात उन फिलखियाम, ये हूरें होंगी जो वो पहले कासिरात थी, उन्होंने खुद ही निगाहें झुकाई हुई थी, ये मकसूरात हैं, वहां ठहराई गई होंगी, रोकी गई होंगी, इनकी रोका गया होगा उनको, फिलखियाम खैमों में। जन्नत के खैमे तो आपको पता है ना, मोतियों से बने हुए, जो मोतियों को कार्व किया हुआ, इतने बड़े मोती होंगे कि जो एक जगह पे बैठा होगा तो दूसरी जगह पे दूसरे किनारे वाले उसको नजर नहीं आ रहे होंगे, इतने बड़े होंगे। सुभान अल्लाह, दुनिया में तो मोतियों की कोई चीज नहीं होती, इसलिए इसका इसको मिसाल नहीं दी जा सकती। तो यानी ये भी खूबसूरत होंगी, ये भी अच्छी औरतें होंगी, ये भी निगाहों को, लेकिन वो झुकाए हुए खुद थी, ये खैमों में ठहराई गई होंगी, यानी आवारा गर्दियां करती फिर नहीं रही होंगी। जैसे दुनिया के अंदर भी औरत की ये एक सिफत होती है कि वो अपने घर में ठहरे, जरूरत से बाहर जाए, ऐसे घूमती ना फिरे। इससे पहले ये भी एक सिफत होती है किसी औरत की कि वो अपने शोहर के लिए ही सिर्फ हो, किसी और के लिए ना हो। तो इनको भी किसी और ने कभी हाथ नहीं लगाएगा, ये बिल्कुल कंवारी होंगी। अभी यही आला रबी कुमार तो कजीबान मुत्तकीन आला रफ रफिन, वो बैठे होंगे मसनदों पर। अब ये उनकी भी मसनद की बात आ गई, वो भी वहां पे बैठे हुए थे, लेकिन उनका क्या बताया गया कि उनके तो गद्दों के ऊपर वाले जो लेयर है उसका तुम अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि वो क्या है। उनकी बीवी, इनकी भी बीवियां खूबसूरत हैं, मगर उनकी बीवियों की तो बात ही कुछ और है। उनकी तो याकूत और मरजान वाली, याकूत और मरजान की वाली ब्यूटी उनके अंदर है, यानी इतनी साफ शफाफ है, सीपी जैसे मोती सीपी में होता है इस तरह से, जिसको किसी ने छुआ नहीं होता, और चेहरे भी हसीन। कान्ना हुन्ना बैदुम मकनून भी कहा गया है ना, कि बहुत जैसे बारीक झिल्ली अंडे के ऊपर होती है ना एक, इस तरह से उनकी स्किन होगी। अल्लाह अकबर, और रूबन तराबा भी आया कि बहुत मोहब्बत करने वाली हैं। लेकिन फिर भी अगर हम ये समझें, ये बात को सोचें कि अगर हूरें इतनी खूबसूरत हैं, तो वो औरत जो मेहनत करके ये दुनिया में, और वो औरत जिसने नमाजें और सजदे और कुरान और अपने आप को दुनिया के अंदर अल्लाह की खातिर फरमा बरदारी करते हुए रखा, उसके हुसन का क्या आलम होगा। और ये भी बाज़ उलमा कहते हैं कि इनसे वो आदमी लज्जत तो पाएंगे, लेकिन जो जिस तरह से मोहब्बत वो अपनी जन्नती बीवी के साथ करेंगे वैसी नहीं हो सकती। और देखें दुनिया में तो इन चीज़ों का मैंने आपको बताया ना कि आप इनको इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप किसी चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं ना, अगर कर सकते हैं, तो वो फिर जन्नत की नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में वो नेमतें जो किसी आंख ने ना देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना किसी दिल में उनका ख्याल भी गुजरा। अल्लाह अकबर। तो अगर ख्याल गुजर जाता है ना, और अगर इमेजिन हो जाता है, तो इसका मतलब है वो जन्नत की नेमत नहीं है, वो दुनिया की होगी फिर। क्योंकि जन्नत की नेमत को तो इमेजिन ही नहीं कर सकते, वहां के हुसन को भी इमेजिन नहीं कर सकते। सिर्फ ये तो एक बातें आपको समझाने के लिए बताई गई हैं, और मिसालें कुछ देके बताई गई। तो दुनिया की नेक सीरत औरत जन्नती औरत बनेगी जब, तो उसके हुसन के अंदाजे कैसे लगाए जा सकते। तो वो बैठे होंगे ऐसी मसनदों के ऊपर, ऐसे बिस्तरों के ऊपर जो, यानी रफ रफ कहा गया ना, तो जमखशरी ने कहा कि रेशम वगैरह के खूबसूरत और बारीक कपड़े को रफ रफ कहते हैं। तो ये भी रेशम है और बारीक है। अल्लाह हू अकबर। और क्या ये भी कहा गया कि खैमे की एक तरफ जो कपड़ा लटका हुआ होता है उसको रफ रफ कहते हैं, और जन्नत के जो लंबे चौड़े कपड़े हैं उनको भी कहा जाता है कि वो भी हो सकता है कालीन भी हो सकते हैं, कोई गालीचे हो सकते हैं। तो वो कैसे होंगे? खुद रेन सब्ज रंग के होंगे। सब्ज इसलिए कि ग्रीन कलर भी इंसान की आंखों को सूट करता है। वह अब कारी ये नहसान, और मैंने आपको बताया बहुत यूनिक, बहुत नादिर नफीस किस्म के, आला क्वालिटी के, और हिसान बहुत ही खूबसूरत। और मैंने आपको बताया ना, अब करी कैसे, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। फबी अय आला रबी कुमा तो कज़िबान तबारक अस्मु रबी का दिल जलाली वल इकराम। आखिरी आयत जो है वो जबरदस्त है कि बहुत बाबरकत है नाम, जात नहीं अभी कहा गया, सिर्फ नाम की बात है। नाम भी उस रब का बहुत बाबरकत है। बरकत किस चीज को कहते हैं? बरकत कहते हैं खैर कसीर को, खैर ऐसी जो कि बढ़ती जाए और उसमें दवाम हो, कभी खत्म ना हो, बाकी रहने वाली हो। ठीक है, यानी हर किस्म की खैर जो ग्रो करे, ग्रो करे। जैसे बरकत कैसे कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि मसलन आपने एक दफा, आपके पास $100 है, आपने $100 खर्च किया और उसमें ऐसी 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 चीजें आपको मिल गई कि आपने कहा अल्लाह अकबर, सिर्फ $100 था और उसमें कितना कुछ मैंने खरीद लिया, ये बरकत हो गई उसमें। और कभी $100 आपके पास आया और पता ही ना उसको चला, कहीं दवाई खरीद ली, कहीं कोई और इलाज के ऊपर, और कहीं पैसे चले गए, और कहीं पैसे गिर गए, और कहीं गुम हो गए, और कहीं कुछ हो गया, और वो पता ही ना चला। आपने कहा देखो वो $100 जो पहला था, आप इतनी सारी चीजें मिल गई, वो बरकत वाला था और दूसरे में बरकत नहीं थी, थे तो दोनों ही एक जितने बराबर अमाउंट के। इसी तरह एक बीज मसलन आपने जमीन में बोया, उससे एक पौधा निकला, आपको एक ही एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन अगर उसी बीज से 10 पौधे निकल आए तो ये है बरका। क्या इसको कहते हैं? बरका, यानी आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा उसमें तरक्की हुई, बढ़ोतरी हुई, खैर ज्यादा निकल आई उसमें से, चीज में से। और वो खैर जो है ऐसी भी नहीं है कि खत्म हो जाए, बल्कि वो बढ़ती जा रही है और वो कायम रहती है, इसको कहते हैं बरका। अल्लाह ताला का सिर्फ नाम भी बहुत बाबरकत है। अब इस सारी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, इसको सारी को लगा लें इसमें, कि इतनी ज्यादा उसमें खैर है और खैर बढ़ती जाती है और खैर ऐसी है जो बाकी रहने वाली है। ये सिर्फ उसके नाम की बात है, वो जात कितनी बाबरकत हो। अल्लाह अकबर। उसका नाम इतना खैर वाला है, इसीलिए फिर उसका नाम जो ले ले और फिर कोई काम शुरू करे, अर रहमान कह के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के कोई काम शुरू करे, फिर उस काम में कितनी खैर हो जाएगी, फिर वो काम कितना बढ़ेगा, फिर वो काम में बरकत कितनी हो जाएगी। आप इससे सोचें, ये हमारा इंस्टीट्यूट जो है ये 2007 में हमने शुरू किया, छोटी बिल्कुल स्मॉल स्केल पे, यानी 2-4 लोगों के साथ, और इतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, कोई ऐसा पता नहीं था कि कोई और लोग आएंगे, कोई सीखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हजारों लोग सीख रहे हैं। तो क्या है ये? इसको कहते हैं बरका। ये इंसान के अपने बस में नहीं होता, ये अल्लाह डालता है, जिस चीज में चाहे बरका डाल दे और जिस चीज से चाहे निकाल ले। ये हम खुद नहीं कोशिशें कर सकते। कोई बरका कोई चीज नहीं है जो हम जाके बाजार से खरीद के ले आए, जो डाल दें अपने पैसों में भी अपने घर में भी। ये अल्लाह डालता है, जिस काम में चाहे डाल दे, उसमें से खैर निकले और खैर बढ़ती ही जाए। तो अल्लाह का नाम है बाबरकत, वो रब्बी का तेरा रब। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा। आप देखे पूरी सूरत के अंदर रिसालत की बात नहीं आई, एंड में आके रिसालत की बात आ गई, तेरे रब का। यानी यहां पर रिसालत का जिक्र आ गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को लाकर यह बता दिया गया कि जो भी जन्नत की ये नेमतें चाहता है ना, उसको चाहिए कि आपकी रिसालत पर ईमान लेकर आए, और रब आपका है। और ये भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एक एजाज दिया गया, तेरे रब का नाम। सब का नहीं कहा गया, रब्बी कुमा यहां पे नहीं कहा गया, सारे जिन्नो इंस तुम्हारा। और फिर ये भी इसके अंदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तसल्ली दी जा रही कि आपका रब है ना, वो तो उसका तो नाम भी बड़ा बाबरकत है, वो आपकी हिफाजत करेगा, नबी आप क्यों घबराते। जिल जलाल वल इकराम, जो जलाल वाला और इकराम वाला है, ये बड़ा इज्जत वाला है। और ये मैंने आपको नाम बता दिया है कि इस नाम के साथ दुआ किया करें, इसकी तस्बीह किया करें। अल्लाह ताला इस सूरत को हमें सही समझने की, और जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बार बार फरमाया है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, तो वाकई अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे कि हम उसकी किसी नेमत को जुटलाने वाले ना हों, बल्कि हर नेमत का शुक्र गुजार हमें बना दे, झुकने वाला बना दे। और अल्लाह ताला हमें ऐसी बंदियां बना दे जो आजिज हों और उसकी फरमा बरदार हों। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अब जो बाकी तिलावत रह गई वो चला दें।
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
Because
تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي